ओम शांति। आज का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गांव में जाने का एक मार्ग था, वो एक ही था और उस पे बहुत कीचड़ था। तो वो सोच रहे थे, उतने में उन्होंने देखा कि एक किशोर स्त्री थी, तो वो भी सोच रहे थे कि इस रास्ते को पार करना है, लेकिन कैसे पार करना है। तो संत जो थे उन्होंने उसकी समस्या को समझ लिया और उन्होंने उस स्त्री को वो रास्ता पार करने के लिए मदद किया। तो शिष्य ने जब ये देखा, उसको रास्ता पार करने के बाद शिष्य ने संत से पूछा कि ये आपने क्या किया, आपको तो स्त्री के तरफ देखना भी वर्जित है और आपने उसको रास्ता पार करा दिया, ये कैसे हो गया? अगर कोई हमें अभी देख लेगा तो क्या होगा, लोग हमको तो सन्यासी मानने से ही इनकार कर देंगे, हमें कोई भी मानेगा नहीं, कोई हमारा प्रवचन भी नहीं सुनेगा। तो संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसको कि जब भी किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है, उसको बहुत कोई जरूरत पड़ती है, तो उस व्यक्ति को देखे बिना, वो व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है, किसी जात का है, किसी धर्म का है, या छोटा है या बड़ा है, कुछ भी ना देखते हुए उसको उस समय मदद करना है। उसमें वो चार बातें बताते हैं कि सबसे पहला है इंसानियत, मानवता। मानवता के नाते हम सभी एक हैं, तो मानवता के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है कि जिस भी मनुष्य को हमारी आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है, तो उस समय उसको मदद करना। और दूसरा उन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति अर्थात अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर जब भी कोई ऐसा संकट आता है, बाहरी संकट आता है या अंदर से भी कोई कलह क्लेश होते हैं, तो उस समय हम अपने राष्ट्र के लिए जितना हो सके, जैसा हो सके अपने पूरा तन मन धन स्वाहा करना है, अपना बलिदान देना है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, मनुष्य बाद में है। तीसरी बात उन्होंने कही कि लक्ष्य। जब भी आप कोई ऊंचा लक्ष्य लेते हो, तो वो लक्ष्य पार करने के लिए मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को, विघ्नों को पार करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, नहीं तो हम आगे कभी भी सफल नहीं हो सकते। और चौथी बात थी कि अन्य किसी भी परिस्थिति में, कोई और भी परिस्थिति है, तो उसमें ये तीनों बातें अप्लाई करने की, कि इन्हीं बातों को देखकर चलने का। एक तो मानवता, दूसरा एक राष्ट्रभक्ति के हिसाब से, या तीसरा लक्ष्य क्या है। तो इन बातों को अगर अनुसरण करके चलेंगे तो हम सदा आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, साधारण मनुष्य जो होते हैं, तो वो एक जैसे समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज के अनुसार चलता है। वो हमेशा देखता है कि मैं जिस परिवार में हूँ, मैं जिस समाज में हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ, तो वहाँ के अनुसार चलता है। वहाँ के लोग जो भी करते आ रहे हैं, चाहे रूढ़ियों से, चाहे परंपराओं से, चाहे वहाँ का जो कोई कस्टम होगा, उस हिसाब से वो चलते हैं। और उसके बाहर जाके अगर उसको कुछ करना है तो उसकी वो हिम्मत नहीं होती, और अगर करने भी जाता है तो तुरंत उसको सबके ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसलिए वो लक्ष्य होते हुए भी हिम्मत अंदर से हार जाता है और देखता है कि अगर मैं ये करूंगा, यहाँ जाना चाहूंगा, तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जैसे घर में भी अगर देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो पेरेंट्स को बनाना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, नॉर्मली इसके आगे वो कुछ सोचते ही नहीं। और अगर बच्चा चाहता है, आजकल थोड़ा सीए का फैड निकला है, अदरवाइज उसके आगे कुछ चाहते ही नहीं है वो, लेकिन बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट अगर कोई आर्ट्स में है, पेंटिंग में है, किसी म्यूजिक में है, तो वो एकदम से बोल देंगे इससे क्या होगा तुम्हारा, अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम आगे जाके क्या करोगे, क्योंकि आज अगर करता है वो तो उसमें गारंटी नहीं होती कि आप कितना सक्सेस हो पाओगे। डॉक्टर इंजीनियर ये प्रोफेशन ऐसे है कि इसमें डेफिनेटली आपकी कमाई होती ही है, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे बच्चे जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसको क्या वो क्या चाहता है, उसकी रुचि किस में है, वो किस में आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कई बार बच्चे मजबूरी से वो कर भी लेते हैं लेकिन उतना वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर जैसे जैसे चलना है इसलिए वो चलते हैं। ऐसे ही अगर जब कोई नया करने जाते हैं तो तुरंत लोग कहते हैं अरे सबसे पहले बाधा तो परिवार से आती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे तो कैसे होगा, जैसे बीके भी बनते हैं तो तुरंत कहते हैं, कुमार कुमारियों को तो खास करके सुनना पड़ता है कि ये तुम्हारी उम्र है क्या ये सब ध्यान योग करने की, ये सब तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी नहीं किया जाता है। फिर ये भी सोचता है अगर ये इसको ज्ञान अच्छा तो लगा है लेकिन इतना निश्चय नहीं हुआ है, तो तुरंत सोचने लगता है कि अगर मैं इस ज्ञान में चलूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं चल पाऊंगा इस पे, अगर लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे इसमें कितना सक्सेस मिलेगा, अगर मुझे नहीं सक्सेस मिला तो मेरा क्या होगा, फिर अगर वापस आना होगा तो क्या होगा, मतलब अपने ही क्वेश्चन के जैसे बाबा बोलता है ना क्यों 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 की मात्रा लगाते हैं हर बात में, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ऐसे करते करते वो जो आगे बढ़ना है उसको वो नहीं बढ़ता है। और जो बाबा के बच्चे दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, उन्होंने सभी ने अक्सर करके 90% तो लोग अकेले ही आते हैं, ज्ञान में चलते हैं, कम लोग परिवार के साथ आते हैं, तो जो अकेले आते हैं और बाबा पे उनमें सच में निश्चय हो जाता है, फेथ हो जाता है, तो वो बहुत युक्ति से चलते हैं, बहुत हिम्मत से चलते हैं, बाबा की मदद का और भी ज्यादा अनुभव करते हैं। उस टाइम ये नहीं सोचते वो कि ये लोग क्या कहेंगे, वो तो पूरी ताकत से, अंदर की पूरी ताकत से, मतलब ये सब परिस्थितियों को पार करते हैं। यहाँ सभी कईयों को ऐसा अनुभव है, हमें तो वो अनुभव नहीं है, हम बहुत सहज रीति से चले हैं। तो ऐसा होता है तो वो लोगों की परवाह किए बगैर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ही वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शायद कोई एक दूरदर्शन पे सीरियल भी आया था, लोग क्या कहेंगे, उसमें उस डायरेक्टर को एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने ये सीरियल क्यों बनाया, शायद इससे पहले भी कोई फिल्म बनी थी, मुझे फिल्म भी पता नहीं सीरियल भी पता नहीं, सिर्फ एक इंटरव्यू पढ़ा था उसमें था कि आपने ये सीरियल क्यों बनाया, तो उसने कहा कि मेरे जीवन में मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी है कि छोटी छोटी बातों में मतलब ऐसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, इस कारण से जिन्होंने ये सोचा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, वो हमेशा दब के रह गए और उनका हमेशा नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने ये सीरियल बनाया है, तो जिससे कि लोग सीखे कि हम दूसरों को इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंस ना दे जो हम अपनी ताकत को छोड़ के, अपनी योग्यताओं को छोड़ के हम उनके हिसाब से चले और अपना नुकसान करेंगे। तो जितना भी हम दूसरों को ध्यान देते हैं, दूसरों के कहने अनुसार चलते हैं, हालांकि कई बार लोगों के सजेशन राइट होते हैं बट कई बार नहीं भी होते हैं, तो जितना लोगों के ही हिसाब से अगर हम चलना शुरू करें तो हम अपना संपूर्ण नुकसान कर देते हैं। जैसे ज्ञान में चलने की बात है, लोग अगर कहेंगे नहीं चलो तो हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, भले लौकिक लाइफ में वो सक्सेस मिले जो भी हो, लेकिन जो आध्यात्मिक लाइफ में हमें जो गोल प्राप्त करना है उससे हम परमात्मा प्राप्तियों से अगर हम वंचित हो जाते हैं, इसलिए लोगों की उतनी ही सुननी है जितनी आवश्यक है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। और भी एक कहानी है, जैसे एक पिता और अपना बेटा और एक उनका एक गधा होता है, वो लेके वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते चलते चलते क्या होता है कि लोग उनको बोलने लगते हैं, अरे ये क्या आपके पास तो गधा है और आप दोनों भी पैदल चल रहे, उससे अच्छा कि गधे के ऊपर बैठ के जाओ, तो वो सोचते हाँ ये बात तो ठीक है, फिर वो बेटा उस गधे पे बैठ जाता है। फिर थोड़ा चलते हैं आगे तो लोग कहते हैं, अरे ये बेटा कैसा है, इसको बाप की जरा भी कदर नहीं है, खुद मस्त गधे पे बैठा और बाप को पैदल चला रहा है। फिर जब ऐसा बोलते हैं तो वो बेटा बोलता हाँ ये बात तो सही है, मुझे तो अपने पिताजी को बिठाना चाहिए। फिर वो बाप बैठ जाता है और बेटा उतर जाता है। फिर थोड़ी देर आगे चलते हैं तो वो लोग उसको कहते हैं, अरे ये किसा बाप निर्दयी है, अपने बेटे को चला रहा है और खुद तो आराम से बैठ के जा रहा है, इसको बेटे की जरा भी कदर नहीं है। फिर वो सोचते हैं, हाँ ये भी बात ठीक है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि नहीं, हम दोनों भी बैठ के जाएंगे गधे पे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर लोग बोलते हैं, कैसे लोग हैं ये, ये देखो एक बेचारा छोटा सा गधा, इस पे दो दो लोग बैठे हैं, उसे क्या हालत हो रही होगी। फिर वो सोचते हाँ ये तो ठीक है। फिर वो उतर जाते हैं, फिर वही होता है कि अरे गधा होते हुए भी ये पैदल चल रहे। फिर वो इतना तंग हो जाते हैं लोगों से, वो क्या करते हैं कि गधे को गधे को रस्सी, एक बैम्बू लेते हैं, उस पर रस्सी से उसको बांध लेते हैं और आगे जाके नदी में डाल देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मतलब इतने परेशान हुए वो कि उसे एक बार का गधे को छोड़ ही देते हैं। मतलब वो काम का गधा होता है उनका रोज का, तो भी उसको वो पानी में डाल देते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने लोगों की सुने। इसलिए मराठी में एक कहावत है, एकावे जनाचे करावे मनाचे, लोगों की सुनो लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। तो लोग तो गीत भी है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोग तो कहते ही रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ कहना ही है। आप कुछ भी करने जाओ, सही करो गलत करो, जो भी है उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है, उसके बिना उनको चैन ही नहीं आता है। तो अगर हम ऐसे ही दूसरों के कहने के ऊपर चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ऐसे ही बाबा के बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि जो गृहस्थ में रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ तो हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बैज लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ हमें कुछ फील नहीं होता है, या बाहर भी ऑफिस में जाते हैं, कहाँ भी जाते तो हमें वो कुछ फील नहीं होता। हम एकदम प्राउड से जाते हैं कि नहीं, हम लोग तो समर्पित है, यहाँ का हमारा ये ड्रेस है, ये है। लेकिन जो बाहर रहते गृहस्थ में, उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे बैज लगा के जाना, बाबा कहता है ये बैज से बहुत सर्विस होती है, ये तुम्हारी एक निशानी है, जैसे मिलिट्री में मेडल होता है वैसे ये भी तुम्हारा एक मेडल है, इससे बहुत सेवा होती है। क्योंकि इसमें एक और लक्ष्य, आपका लक्ष्य है कि क्या बनना है, दूसरी ओर त्रिमूर्ति शिव बाबा है कि शिव बाबा कौन है, उसकी क्या कर्तव्य है, इससे बहुत सेवा होती है। लेकिन होता क्या है, जब बाहर लगाकर जाओ बोलो तो सबको एकदम से एक शर्म आ जाती कि हम कैसे लगा के जाएंगे, बैच लगाएंगे तो लोग हमको क्या बोलेंगे। और जब कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे अंदर भी अगर इतना अच्छे से ज्ञान नहीं होता है तो हम उतना ज्ञान समझा नहीं पाते, तो लोग हमारा फिर मजाक उड़ाते हैं। और जब हम उसी डर से कि लोग हमारा चार लोगों में मजाक उड़ाएंगे वो देख के हम डर जाते हैं, इसलिए हम फिर बैज लगाते नहीं है। हालांकि कई बार ऐसे देखा गया है कि कई भाइयों का ऐसा अनुभव है कि वो जब बैज लगा के इंटरव्यू देने गए तो उनको वो इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया, जितने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, उससे भी अच्छे लोग थे, अच्छे थे स्टूडेंट्स, लेकिन उनका उनको वो सर्विस मिल गई क्योंकि उन्होंने बैज लगाया था। तो एक भाई ने कहा था कि वो जो उनका इंटरव्यूअर था मेन वाला, वो एक बार मधुबन होके गया था, इसलिए उसको पता था कि ब्रह्मा कुमारी क्या संस्था क्या है, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो बाद में उसने पूछा भी कि मुझे सिलेक्ट क्यों किया आपने, तो कहा कि आजकल कंपनीज में टैलेंटेड लोग बहुत आते हैं, सब कुछ उनका कैलिबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतनी ऑनेस्टी से वो कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, या वो कंपनी आगे बढ़े उसके लिए भी इतना काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी सैलरी कैसे बने, अपना ये कैसे करें, अपने को आगे कैसे बढ़ाना है उस हिसाब से करते हैं, और बाद में कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हम लोग ऑनेस्ट लोग चाहते हैं तो हमने आपको जॉब दी। दूसरा भी एक भाई है तो वो भी ऐसे बैज लगा के गया था इंटरव्यू के लिए, तो उसको इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन वो बहुत जॉब ढूंढ रहा था, कहीं भी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। उस दिन वो ऐसे मतलब बाबा को बोल के तो जाते ही है, नौवीं बाबा के बच्चे, तो बाबा को बोल के गया बाबा कि देखो भाई आपको क्या करना है, मेरे को तो जॉब की बहुत आवश्यकता है। तो उस दिन वो बैच लगा के गया तो एकदम वो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि ये बैच क्या है, तो उसने बाबा का बहुत अच्छे से परिचय दिया। फिर उसको पूछा कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, उसने कहा कि मैं गीत गाने में इंटरेस्ट है। तो उसने उसको पूछा कि आप हमें वो गीत सुनाओ कुछ, बाबा का युगरतन भाई है ना, आप जानते होंगे शायद उसका वो इंटरव्यू। हाँ, तो फिर उसने गीत सुनाया बाबा का, बहुत अच्छा बाबा का परिचय दिया, तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। तो तो उसको जॉब मिल गई और उसको बाद में इतनी मतलब आराम की जॉब मिल गई, वो जब भी चाहे मधुबन आ जाता है, उसको इतना छुट्टी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक बैच का फायदा हुआ, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके अंदर इतना बाबा के लिए प्यार था, इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो बैच लगा के गया, इतना अच्छा ज्ञान था। दूसरी बात है मेन भोजन करने की, जब बाहर होते हैं तो भोजन की बहुत समस्या आती है। अगर हम जॉब मतलब परिवार में भी रहते हैं तो कहीं किसी के घर आना जाना करना पड़ता है, तो हम लोग अगर नहीं खाते दूसरों के घर में, या मतलब हर एक को होता है ऐसा, सब जगह जाना ही पड़ता है, ऑफिस वाले ऑफिस में जाते हैं, बच्चे अपने कलीग अपने दोस्तों के पास जाते हैं, सबको सब जगह जाना पड़ता है, तो ये जो फिर खाना नहीं खाते हैं तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी धारणाओं में इतने पक्के नहीं होते तो ढीले हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या होता है एक बार खाया तो, बिना प्याज लहसुन का है। लोग बड़े इससे बोलते हैं, नहीं नहीं आपके लिए हमने खास बिना प्याज लहसुन का बनाया है, नहीं आप तो चाय तो पी सकते उसमें क्या है, वो तो दूध की बनती है, या तो फिर कॉफी तो पी सकते हमने बनाई है। फिर बोलेंगे हमारा तो आपके लिए बहुत प्यार है, क्योंकि हम लोग ज्ञान देते हैं कि दूसरों के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो जितने हम तरकीब जितने हम लोग पॉइंट्स देते हैं उसके ऊपर उनके भी पास वो पॉइंट्स होते हैं, तो वो उस तरीके से हमको डाउन करना चाहते हैं हमारी धारणाओं से, और फिर बोलते हैं खाओ। अगर उसके बाद भी नहीं खाते हैं तो बहुत नाराज होते रहते, कई बार संबंध मतलब रिलेशन खराब भी हो जाते हैं, वो हमारे से रिलेशन तोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी धारणा है तो धारणाओं के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए हमारी धारणाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बड़े दादी का एक एग्जाम्पल है। दादी कहीं एक बार एक बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर के पास कहीं गए थे और उनसे बहुत बड़ा काम कराना था यज्ञ का। फिर दादी गए तो भावना तो थी उनको, तो दादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ सामने रखा परोस दिया, तो दादी ने कहा भाई मैं तो ये नहीं खाऊंगी। तो फिर दादी ने वही सब ज्ञान, तो उन्होंने पूछा नहीं हम तो हमारे आपके लिए बहुत भावना है, बहुत श्रद्धा है, आप अगर हमारे घर खाएंगे तो हमारा मतलब हम बहुत उपकृत हो जाएंगे, तो बहुत थी भी उनकी भावना नो डाउट। तो बहुत उन्होंने तरीके से समझाया दादी को। फिर लास्ट में दादी ने कहा भाई नहीं अन्न का मन पे प्रभाव पड़ता है ऐसा सब दादी ने ज्ञान सुनाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो आपके लिए भावना ऊंची है, मेन तो भावना होती है, दूसरी बात होती है कि हमने जो ये भोजन बनाया तो हमारे घर का पैसा भी अच्छा है, उन्होंने बोला मतलब हम इलीगल तरीके से काम नहीं करते हैं। फिर बोले कि आपके लिए बहुत हमने सब नए बर्तन रखे, सब कुछ नया ऐसा रखा है तो आपको खाना चाहिए, फिर भी दादी नहीं माने थे। तो लास्ट में उन्होंने सबसे एक पॉइंट दिया कि नहीं आप तो कहते हो ना कि योग बल से आपको विश्व को पावन बनाना है, तो ये क्या भोजन को आप पावन नहीं बना सकते क्या योग की शक्ति से? तो दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उनको कि भाई मैं तो योग की शक्ति से इसको पावन बनाकर खा भी लूंगी, लेकिन हमारे जो भाई बहन है वो जब इस बात को सुनेंगे तो उनको तो वैसे भी संसार में रहना पड़ता है, उनके पास बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है सब बातों में, तो वो क्या सोचेंगे कि दादी ने तो योग करके खा लिया तो हम भी ऐसे योग करके खा लेंगे। लेकिन दादी ने कहा कि सबकी इतनी योग की शक्ति भी नहीं है कि जो उस भोजन को पावन बना के इतना खा सकेंगे। हम तो देखते हैं ना कि ब्रह्मा भोजन हमें रोज मिलता है तो भी हम एक मिनट शिव बाबा को याद करके दूसरे मिनट तो शिव बाबा भी भूल जाता खाना शुरू हो जाता है, कितने बार बीच में याद भी आए तो भी वो एकदम साइड हो जाता है शिव बाबा, वो खाने में ही लगते हैं। तो वो तो बात बाहर के खाने की है, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी। और भले लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी तो भावना अच्छी है, लेकिन हम इतना जानते नहीं ना कि उनकी भावना सही में इतनी हमारे लिए है क्या, क्योंकि जब देवताओं को भी भोग ऑफर करते हैं तो कौन सी इतनी भावना से करते हैं, वो तो एक काम करके काम है भाई भोग लगाना है करके हम करते हैं, तो वहाँ इतनी भावना होती ही नहीं है, तो क्या हमारे लिए लोगों की इतनी भावना होगी, इतनी सच्चाई सफाई से इतना बनाया होगा? तो दादी ने क्या कहा कि दादी को जब मालूम था कि ये सब काम करने वाले हैं हमें यज्ञ में आगे भी इनकी जरूरत पड़ी, तो भी दादी ने अपनी धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर दादी ये सोचते कि ये इतना बड़ा मिनिस्टर है, अगर इनसे हम अगर आगे हमें इतना काम लेना है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो ये क्या सोचेगा, ये तो हमारा संस्था का काम बनने नहीं देगा, बिगाड़ देगा, तो कैसा होगा? लेकिन दादी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या कहेगा, दादी अपने में दृढ़ रही, अपनी धारणा में पक्की रहे, लेकिन उसके लिए आंतरिक बल आंतरिक शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसे ही मतलब लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी करें, कितना भी अच्छा करें, लेकिन हर एक का देखने का पर्सपेक्टिव अपना होता है हमारी तरफ, उनके अपने सोच होते हैं, उनके विचार होते हैं, उसी अनुसार वो देखेंगे। तो वो अगर अपने हिसाब से हमारे ऊपर कुछ भी लादना चाहे तो हम उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उनके बारे में सोचेंगे कि वो हमारे हर कार्य से खुश हो जाए, ऐसा हम कार्य करना चाहे, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। क्योंकि चार लोग सेटिस्फाई होंगे, दूसरे 10 लोग डिससेटिस्फाई होंगे, वो आप पे कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह नहीं करनी है हमें, सच्ची खुशी किस में मिलती है उस अनुसार हमें वो कार्य करना है। बाबा ने ये भी कहा कि 100% आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, 95% कर सकते, 5% की मार्जिन दी है। तो हम हर किसी के हिसाब से नहीं चल सकते, हम जितना दूसरों को खुश करना चाहते हैं उतना हम और भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए जो राइट है उसी अनुसार चलना है, उसी अनुसार कार्य करना है। क्योंकि जैसे हमारे पास जो खजाने होते हैं तो उसके चाबी हम और किसी के हाथ में नहीं देते हैं, हम अपने आप अपने पास संभाल के रखते हैं उसको। ये वैसे ही ये खुशी भी हमारा एक खजाना है। अगर हम उसके दूसरों के हाथ में, दूसरों के कहने के ऊपर, दूसरों के कमेंट के ऊपर, दूसरों के कहने उनके अच्छा या बुरा कहने के ऊपर हम खुश व दुखी हो जाते हैं, तो जैसे हम एक कठपुतली बन जाते हैं उनके हिसाब से। तो वो जैसे चला है वैसे हम थोड़ी चले, हम तो अपने मास्टर हैं, खुद के मास्टर है, तो हमें अपने हिसाब से चलना है। तो उसके लिए आवश्यकता है। और दूसरा एक होता है कि कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ये कर तो रहे हैं, तो अंदर में आत्मविश्वास नहीं होता है उस बात के लिए, ना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो हम अनुमान भी लगाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या कुछ काम करने जा रहे हैं, खास सबको मालूम है कि भाई ये यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे बाहर भी होता है, हम सेंटर पे जा रहे होते हैं और मालूम है कि अक्सर लोग ब्रह्मा कुमार को मानते नहीं, अच्छा नहीं बोलते, वहां जाना अच्छा नहीं कहते, सफेद कपड़े पहन के जाओ। तो अगर लोग बात कर रहे तो हम तुरंत अनुमान लगाते हैं, शायद ये हमारे मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। और रोज भी ऐसा होता है कि हमारे पता है कि ये हमारे से इनकी बनती नहीं है, तो हम वहां से गुजर रहे हैं और हम वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो वो नहीं भी बोलते तो भी हमारे कान बजने लगते हैं कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं कुछ, तो भी हाँ नहीं मेरे रिलेटेड ये बात है और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसे अनुमान लगाते हैं, इसलिए भी हम दुखी होते हैं। तो जो हमारी स्थिति है वो डाउन हो जाती है और हम और बातों में फिर उलझते रहते हैं। इसलिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमें अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है। हमारा दिल जो चाहता है वही हमें करना है। लोग क्या कर रहे हैं, हमारा लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। हमने अगर हमारा लक्ष्य हासिल किया है तो हमें उसको प्राप्त करना ही है। अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये भी नहीं कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें वो कुछ घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो ये भी नहीं कि मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए वही करना है, नहीं, अंतरात्मा की आवाज। कुछ हम खास एक टास्क कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो उस अनुसार हमारा ये लक्ष्य है, तो हमें वो कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में सोचना है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हो नहीं, क्योंकि ऐसे रोज भी ऐसे हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, कई बार हम सेवा ज्यादा करते हैं तो लोग होते क्या ये तो सेवा ही करते रहते हैं, इनका तो ज्ञान योग भी इंटरेस्ट ही नहीं है, ज्ञान योग करने जाओ ज्यादा तो बस ज्ञान योग में ही लगे रहते हैं, इससे होता है क्या सब नहीं, बैलेंस रखना चाहिए, वो हमें बैलेंस का पाठ पढ़ाते हैं। ज्यादा जल्दी सुबह उठो तो बोलते हाँ बड़े योग करने आए, फिर जरा सी मिस्टेक होती है तो तुरंत कहते हैं कि हाँ देखा ना वहाँ योग करते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल धारणा ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही करते हैं, शो ऑफ करते हैं। यहाँ नहीं लेकिन ऐसा होता है, सुनना पड़ता है सबको, अनुभव है इसका। नहीं करो तो बोलते हैं देखो यहाँ रहते भी ऐसे ही घूमते फिरते रहते, तो हम किसी के कोई मारने वाला होता है उसका हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए लोग कुछ भी कहे उसको हमें ध्यान नहीं देना है, तो हमें अपने हिसाब से अपनी सेटिंग करनी कि हमें कितना करना है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि एकदम ढीले होके चलना, नहीं, हमें चारों ही बातों में, चारों इसमें सब्जेक्ट में पूरा बैलेंस रखते हुए चलना है। फिर दूसरा है हमारा एक तो लक्ष्य ऊपर बहुत महान रखना है, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा हमारे लिए क्या कह रहे हैं वो, कई बार हमें अवॉइड भी करना पड़ता है और कई बार उसको लेट गो करना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। और तीसरा है कि अपना इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाना है। अगर वो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जैसे भी हम स्वयं हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट हर किसी का 10% है, कोई 20% है, कोई 50% है, कोई एकदम 90% है, तो उसके साथ हमें कंपैरिजन भी नहीं करना है। हमें स्वयं को एक्सेप्ट करके चलना, हम जो है जैसे है ठीक है, लेकिन अंदर में ईमानदारी हो, पापा के साथ सच्चाई सफाई हो, उस अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं को प्रेम करना है। हम दूसरों से ही प्रेम की अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए दूसरों से प्रेम नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो स्वयं को प्रेम करना अर्थात स्वमान में भी रहना है, स्वयं को ऊंची स्टेज पे रखना है, स्वचिंतन करना है, और ऐसे ही अपने को चलाना है। क्योंकि कहते हैं कि स्वचिंतन से ही हम आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और सबसे लास्ट बात है कि हम कौन है, हमारे साथ कौन है। जब हम बाबा के बच्चे हैं तो हम परमात्मा की संतान है। ब्रह्मा मना शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, तो हम इस दुनिया के सबसे महान आत्माएं हैं। तो हमारे इतने सारे स्वमान है, उसमें हमें याद आता है कि हम कौन है, हमें क्या करना है। तो जब बड़े लक्ष्य को मतलब प्राप्त करना है तो छोटी छोटी बातों को साइड करना होता है। तो हम कौन है ये ध्यान रखना, और हमें बाबा से कितनी सारी प्राप्तियां हो रही है उसको ध्यान रखना, तो ये सब लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों से किनारा हम कर सकेंगे। ओम शांति।